ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. مومنین کرام، شفاعت پہ ہماری بات ہو رہی ہے، گفتگو جاری ہے، اور آج ہم آٹھویں مجلس تک الحمدللہ آپ پہنچے. کل جو ہم نے بات جہاں پہ ختم کی تھی کہ شفاعت کا حق کن لوگوں کو حاصل ہے، اس پہ ہماری گفتگو جاری، کن لوگوں کو حاصل ہے، آج کچھ اور رشتوں کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، جہاں مشترک حدیث ہوتی ہے ہم بتا دیتے ہیں کہ مشترک ہے. تو اب جو حدیث آپ کے سامنے پیش کریں، کنز المال جو ہمارے برادران کی کتاب ہے، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس حدیث کا نمبر ہے 30039. 39041، یعنی 39041 یوں بن جائے گا، 39041 حدیث ہے. یہ نمبر ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ وہ جلدیں تو مختلف ہیں نا، کہیں 3 جلد، کہیں 4 جلد، کہیں 5 جلد، کوئی شرح کے ساتھ جس نے بھی لکھی اس نے الگ، جیسے صحیح بخاری ہے تو جب شرح کے ساتھ لکھی گئی تو نہ معلوم کتنے افراد نے لکھی ہے، سینکڑوں نے لکھی تو اس کی جلدیں بھی سب نے الگ الگ بنائی ہیں. جیسے ہمارے یہاں اگر شرح اصول کافی کسی نے لکھی ہے تو بہت ساری اس کی جلدیں ہیں، کہیں 4 جلدوں میں اصول کافی، کہیں 6 میں ہو گئی ہے، کہیں 8 میں ہو گئی ہے، کہیں 10 میں ہو گئی ہے. اس طرح بہار کا جو پرانا نسخہ ہے وہ 25 جلدوں کا ہے، پھر اس کے بعد وہ 50 جلدوں میں بنا، اب وہ 109 یا 110 جلدوں میں آ چکا ہے، 110 جلدوں میں تقریباً بہار الانوار. تو اس لیے حدیث کا نمبر ہم نے بتا دیا کنز الامال میں، اور اس کے ساتھ ہی حدیث ہمارے یہاں تو موجود ہے ہی، بس بہار کا حوالہ کافی ہے، باقی اور جگہ بھی سب جگہ یہ موجود ہے. الشفاء و خمسۃ، جو قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہوں گے 5 طبقے ہوں گے. اچھا، یہ بھی ہم نے وضاحت کر دی تھی 2-3 روز پہلے کہ یاد رکھیے کہ کوئی تضاد نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے. کہیں 3 طبقے بتائے گئے ایک حدیث میں ہیں، انبیاء، علماء، شہداء، ایسا ہوا نا. اچھا، کہیں اب ملائکہ کا اضافہ کر دیا گیا، اور کہیں اوصیاء کا ہے نا، انبیاء، اوصیاء، ملائکہ، شہداء. ایسا نہیں ہے کہ تضاد ہے کہ صاحب ایک میں وہاں تو 3 بتایا ہے، یہاں 4 بتایا ہے، وہاں 5 بتایا ہے. یہ پہلے ہم وضاحت کر چکے ہیں، نہیں، موقع کی مناسبت سے اللہ کے رسول نے بات ایک ہی ہے، بات ہی نہیں کہ 2-4 بات. مثلا صبر و صبران، صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. حالانکہ صبر 3 قسم کا بھی ہے، صبر و صبران بھی ہے، اس میں 2 قسمیں بھی بتائی گئیں صبر کی روایات میں، اور روایت میں صبر کی 3 قسمیں بھی بتائی گئیں، ٹھیک ہے نا. یہ موقع کی مناسبت سے کہ کہاں بات کی جا رہی ہے. مثلا ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے حضور، اب درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، ایک بدوی آیا، یعنی بدو آیا، عرب آیا، جو صحراؤں میں بادیا نشین ہوتے ہیں، وہ آیا، پہنچا وہاں پہ، اس نے اپنا اونٹ کھڑا کیا، اونٹ باندھا، اور آ کے ایک دم کہتا ہے کہ حضور میں جا رہا ہوں اپنے گاؤں واپس، گاؤں واپس جا رہا ہوں، مجھے اسلام بتائیے کیا ہے. آپ بتائیے، ناقے سے اترا ہے، ابھی بیٹھ کے چلا جائے گا، چاہتا ہے کہ 1 منٹ میں پورا اسلام اس کو بتا دیا جائے، لیکن اللہ کا رسول ہے نا، جب اللہ کا رسول ہے تو 1 جملے میں ہی اسلام بتائے گا، ہے نا. یعنی اس کو ایسی ایک کلید دے دو، ہے تو مسلمان نا، نماز روزہ تو جانتے ہی رکھنا ہے، ایک اس کو چابی دے دو، اس کو نا ایسی کلید اس کے ہاتھ میں دے دو کہ یہ اس کو مسئلہ اس کا حل ہو جائے. یعنی اب دیکھیں کتنی اہم بات کی، جیسے اس نے کہا حضور مجھے اسلام بتائیے کیا ہے، تو اس نے فوراً اس کو جواب دیا کہ جا ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر. پھر اس نے پوچھا اسلام کیا ہے، کہا ماں کی خدمت کر. پھر پوچھا اسلام کیا ہے، کہا ماں کی خدمت کر. پھر چوتھی بار پوچھا اسلام کیا ہے، کہا باپ کی خدمت کر. وہ مطمئن ہو کے چلا گیا. کیا مطلب؟ अब कोई वहां पर हो और ये सवाल करे कि हुजूर वो नमाज कहाँ गई जो आप लेकर आए थे, वो रोजा कहाँ गया जो, जैसे हमारे यहाँ होता ना एक चीज को पकड़ लेते हैं और कहते हैं बाकी किसी चीज की हमें जरूरत ही नहीं है। तो भाई ऐसे तो पता नहीं कितनी रिवायत है, जैसे रिवायत मैंने पढ़ी तो आराम से कह सकते हैं गांव जाके पूरे गांव वालों को किस चक्कर में तुम पड़ गए, कहाँ तुम नमाजें पढ़ रहे हो, कहाँ तुम रोजे रख रहे हो, कहाँ तुम तहज्जुद पढ़ रहे हो, कहाँ तुम ज़कात दे रहे हो, कहाँ तुम खुम्स दे रहे हो। अरे भाई हुजूर ने फरमा दिया माँ की खिदमत करो जन्नत में जाओ, सारा इस्लाम ये है, कह सकते हैं ना। बस यही तो समझने की बात है कि ऐसा थोड़ी होता है कि किसी एक अमल के लिए अगर ऐसा कहा गया तो बाकी सारी चीज़ें माफ़ कर देंगे, नहीं। ये इसलिए बताया कि तुम्हारे सारे आमाल का दारोमदार माँ की खिदमत पर है, यानी तुम इबादत करते रहे करते रहे करते रहे, माँ को नाराज किया, माँ को तकलीफें दी, तो तुम्हारी सारी इबादतें फारिग हो गईं। अब ये इतनी बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि मुमकिन है कुछ लोग बर्दाश्त ना कर सकें, ना कर सकते हो, ना कर सकें, मैं कोई थोड़ी रुक जाऊँगा बात पहुँचाने से, जो असल बात है, जो हकीकत बात है, जो सच्ची बात है, पहुँचाने से रुक जाऊँगा क्या? अगर माँ बाप का आखशुदा है, माँ बाप को अजियतें देता है, माँ बाप को तकलीफें देता है, मैंने अभी क्या कहा कि सारी इबादतों का महवर है माँ बाप की खिदमत। अब देखिए मुशरिक होना अलग बात है, अगर माँ बाप मुशरिक हैं तो सिर्फ शिर्क में उनका साथ नहीं देना है ना, शिर्क में उनका कहना नहीं माना है, कुफर में उनका कहना नहीं माना है, बाकी तो उनका हक है ना, उनको दुनिया में राजी रखना है। और जहां मोमिन माँ बाप हों और उसके बावजूद वो मुस्लिमीन हो और उसके बावजूद माँ बाप को अजियत दें और फिर जाके हज करके आए, कितनी बड़ी इबादत है हज, और हर साल हज करे, साल में चार उम्रे करता रहे भाई। अब मैं आगे बढ़कर जो बात कहना चाह रहा हूं, लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे, इंसाफ से बताओ जो अपने माँ बाप को राजी करके करबला जाए, माँ बाप को नाराज करके करबला चला जाए, माँ बाप को अजियतें देकर करबला चला जाए, उसकी ज्यारतों का क्या हाल होगा? इंसाफ से बताइए आप मुझे। खुदा के बंदो सीधा सा उसूल है कि जो अपने माँ बाप का नहीं हो वो अहले बैत का कहां से होगा, जो अपने माँ बाप का नहीं है वो हुसैन का कहां से आया, जो अपने माँ बाप का नहीं है वो मौला अली का कहां से आया, जो अपने माँ बाप का नहीं उसका खुरासान जाने का फायदा, जो अपने माँ बाप का नहीं वो कुम जाने का फायदा, सामरा जाने का फायदा, काजवैन जाने का फायदा, वो उनके दर है कि जिनकी माँ को अल्लाह ने कायनात में सबसे अजमत वाला बनाया है। समझ में आ गया? चाहे वो मौला अली की माँ हो, चाहे वो पैगंबर खत्मी मर्तबत की माँ हो, या है वो 11 आइम ताहरीन की वालिदे गिरानी हो, माँ की अजमत वहीं मिलेगी ना, जनाब खदीजा की सूरत में, जनाब आमना की सूरत में, जनाब फातिमा तो जहरा सलामुल्लाह अलैहिन्ना अजमाइन, सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब हम जो बताना चाह रहे हैं समझ में आ गई बात, कि इंसान एक अमल पकड़ लेता है, कहता है कि भाई ये कर रहा हूँ ना, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं करने की जरूरत है? तो काहे के लिए आए थे 1,24,000 अंबिया, किस लिए जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही ले लेकर आते थे, और किस चीज़ को बचाने के लिए हुसैन ने कुर्बानी दे दी भाई, किस चीज़ को बचाने के लिए? कुछ तो है ना जिसको बचाया, तो कहते हैं इस्लाम बचाया, तो भाई इस्लाम बचाया है ना। समझ में आ गई बात कि इस्लाम को बचाने के लिए सारी कुर्बानियाँ दी, तो इतनी इतनी बड़ी चीज़ है ना इस्लाम के, जिसको बचाने के लिए अपने बच्चे कुर्बान, भाई कुर्बान, बेटे कुर्बान, खुद अपनी जान कुर्बान, और फिर कायनात की मोहतरम तरीन खवातीन के सरों की चादरें भी कुर्बान हो गई। समझ में आई बात? खैर मसाइब के बाब में जाएंगे जब बात करेंगे, तो अब इतनी सी बात समझ में आ गई कि इस्लाम बताइए। अब जो बात समझाना चाह रहे हैं कि अगर कहीं कहीं बताए कि इस्लाम ये, कहीं बताए इस्लाम सब्र है, कहीं बताए तो मौके की मुनासिबत से, ताकि जा रहा है एक उसूल लेता जाए। अब उसको मालूम है कि बाकी चीज़ें तो करनी करनी है भाई, नमाज तो पढ़नी, रोज़ा तो रखना, इन तमाम इबादतों की हिफाजत कैसे होगी? इस्लाम कहाँ छुपा हुआ है? सलामती में क्या इस्लाम यहाँ छुपा हुआ है? और कहीं इस्लाम की तारीफ क्या बताई कि कौन है मुसलमान की तारीफ क्या बताई, जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, और अगर दूसरा मुसलमान महफूज ना हो तो हदीस है ना अल्लाह के रसूल, कि मुसलमान कौन है, इस्लाम क्या है, एक मुसलमान के हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। लिहाजा मुसलमानों ने क्या तरीका निकाला, ये हदीस तो सबके पास है, ये वाली हदीस तो सबके पास है ना, कि भाई जो भी मुसलमान है दूसरा मुसलमान उसकी ज़बान और हाथ से महफूज रहना चाहिए, लिहाजा अब इसको महफूज तो रहना नहीं है, लिहाजा क्या किया जाए, लिहाजा दूसरे को काफिर बनाते चले जाओ अजियतें देने के लिए। जब कोई पूछेगा भाई तुमने दूसरे मुसलमान को अजियत क्यों दी, कहा मुसलमान का तो काफिर है, तो इस हिसाब से सब ने एक दूसरे को काफिर बना दिया, मुसलमान कोई बचा ही नहीं है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब समझ में आया कि क्यों काफिर बनाते हैं, क्योंकि मुसलमान ही रहेंगे तो फिर मसला हो जाएगा ना, फिर कहेंगे भाई हदीस तो ये है अल्लाह के रसूल की कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज, महफूज नहीं रहेगा तो मुसलमान नहीं रहा ना। लिहाजा क्या करेगा, पहले तावील करेगा, पहले उसे काफिर बनाएगा, फिर अजियतें देगा, क्यों काफिर है ना इसलिए। हालांकि काफिर को भी अजियतें देना इस्लाम में जायज है, कहाँ जायज है, कहाँ जायज। काफिर हर भी और है जो आपसे लड़ रहा हो, जो आपको तकलीफ दे रहा, जो आपके माशरे में रहता है, कहाँ जायज है कि उस काफिर का कत्ल कर दो, कहाँ जायज है उस काफिर का माल लूट लो, कहाँ जायज है उस काफिर का घर जला दो। हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि खुदा ना करे, खुदा ना करे झूठा भी इल्ज़ाम लगा दिया जाए किसी पर, अकलियती आबादी पर, किसी बिरादरी गैर मुस्लिम बिरादरी पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि इसके बच्चे ने या इसके बड़े ने कुरान की तोहीन कर दी। कोई नहीं पूछेगा कहाँ तोहीन हुई, किधर हुई, किसने की। फ़ौरन उनकी आबादियों पर हमला करते हैं, दो दो सौ ढाई ढाई सौ घर जला देते हैं। अभी माजी करीब में देखा नहीं आपने क्या किया उन बेचारों के साथ, साठ सत्तर साल में एक इंसान, वो गरीब लोग घर बनाते हैं, वो झाड़ू देने वाले लोग बेचारे सड़कों पर, साठ सत्तर साल में किसी ने अपना घर बनाया चालीस पचास गज का और उसको आग लगा दी, और सामान लूट के ले आ रहे हैं इस्लाम के सिपाही घरों से। कोई टीवी उठा, वो दिखाया सब दिखाते हैं, कोई टीवी लूट के ले जा रहा है, कोई छोटा सा फ्रिज उठा के ले जा रहा है। क्या ये माल गनीमत है, वो जंग थी, ये माल गनीमत है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अजीब है, अजीब है, बिल्कुल अजीब नहीं है ये। अच्छा फिर उसके बावजूद उस बात झगड़ा हो रहा है हुकूमत के साथ है, झगड़ा किसके साथ हो रहा है, एहतजाज हो रहा है हुकूमत के खिलाफ है। अरे हुकूमत ने फला मुल्क के सफीर को अब तक क्यों नहीं निकाला, झगड़ा उससे हो रहा है ना हुकूमत से। गाड़ियां किसकी जला रहे, घर किसके जला रहे, इमलाक किसके लूट रहे, अब इसकी कोई तावील है किसी नहीं। जो गुस्से में थे तो गुस्से में अपना घर क्यों नहीं जला दिया उसने, गुस्से में अपनी गाड़ी क्यों नहीं जला दी, गुस्से में अपने सामान को बाहर निकाल के आग क्यों नहीं। गुस्से में तो गुस्से में तो हो जाते, तो गुस्से में अपना घर जलाए ना, दूसरों की इमलाक को क्यों लूट रहा है। कोई भी करे, मैं करूं या कोई करे, हमारे तबके में से करे, किसी भी तबके में से करे, आवाम की इमलाक को नुकसान पहुंचाना किस मजहब में जायज करार दिया गया है, कौन सा मजहब है ये कि लोगों के जानो माल से खेलो, लोगों की गाड़ियां जलाओ, लोगों का इमलाक जलाओ, लोगों के पार्क तबाह कर दो, लोगों की दुकानें लूट के ले जाओ, और भी कहो कि तुम इस्लाम के चैंपियन हो। कोई, मैंने अर्ज किया, कोई भी करे, हम में से करे या वहां से करे, हमारा करेगा वो भी गलत है, कोई भी करेगा गलत तो गलत है, गलत कैसे सही हो जाएगा। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बार और सलावत इनायत फरमा दीजिए। अब आइए, अब इस हदीस में पांच और, यानी ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह और उसका रसूल चाहता है कि किसी कोई रास्ता निकालो इनको बख्शने का। वो रहमान और रहीम है। कुरान मजीद में कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, पहले भी आयत के मैंने तिलावत के शरफ हासिल किया था, है अभी गुनाहगारों से कही, बामल है नहीं, बामल लोगों से नहीं, जिन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, गुनाह किया है, उनसे कही है हबीब, उनसे कह, बशारा दे रहा है अल्लाह का रसूल। मैंने मिसालें भी दी थी आपके सामने, बहलोल की वगैरह की मिसालें भी दी थी आपके सामने, कही अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, सारे गुनाह बख्श दूंगा। और ऐसा लग रहा है कि अल्लाह का रसूल भी ये चाह रहा है। और कितना बदबख्त और बदनसीब है वो इंसान कि अल्लाह भी रास्ते बता रहा है, एक बार तौबा कर ले, आज मेरी बारगाह में बख्श दूंगा, सब बख्श दूंगा, माफ़ कर दूंगा, एक बार तौबा कर ले। अल्लाह का रसूल भी बता रहा है, ये कर लो जाओ बख्श दूंगा, ये कर लो जाओ बख्श, मैं शिफात करूँगा, मेरे बच्चे शिफात करेंगे, कुरान शिफात करेगा, सिले रहमी तुम्हारे रिश्तेदार शिफात करेंगे, तुम्हारी अमानतदारी शिफात करेगी, समझ गया। अभी कितने, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे परवरदिगार राहें निकाल रहा है। अब वो लफ्ज़ अच्छा नहीं लग रहा मशीयत के साथ, तो यदि मैं खुदा का लफ्ज़ मशीयत कह देता हूँ, मशीयत बहाने दे रही है, बहाने तलाश कर रही है माफ़ करने के, किसी तरह बख्श दो। क्यों, ये बताइए कि अल्लाह से ज़्यादा अपनी मखलूक से कौन मोहब्बत करेगा। भाई कहते हैं ना कि माँ की मोहब्बत कायनात में ज़रूर मिसल है ना, माँ की मोहब्बत, ये जो माँ की मोहब्बत का खालिक है कौन है, माँ की मोहब्बत का खालिक, इस जज्बे मोहब्बत का खालिक कौन है, ये जज्बा है ना, एहसास है ना, जज्बे मोहब्बत, ये जज्बात तो मादा परस्ती का जवाब है। मादा परस्त कहते हैं ना कि साहब जो चीज़ नज़र ना आए, समझ भी नहीं आए, छूने में नहीं आए, देखने में नहीं आए, हाथ लगाने में नहीं आए, जायके में नहीं आए, नाक में सूंघने में नहीं आए, कान में सुनने में नहीं आए, आँख से देखने में नहीं आए, उसका वजूद नहीं है। यह है खुलासा कहानी का, देहरियों का, देहरी से मुराद यानी अथीस्ट, जिनका कोई दीन नहीं होता उनका, ये है ला मजहब लोग जो कहलाते हैं, ला दीन मजहब, अब अभी बहुत हैं, आजकल भी बहुत हैं, बड़े बड़े बुकरात बनते हैं, सोशल मीडिया पे बैठ जाएंगे, पता नहीं क्या लंतरानियाँ हाकेंगे। अच्छा अब सवाल ये होता है, लोग समझते हैं कि बड़े काबिल हैं, अरे भैया हम उनको जवाब कैसे दें, हम यही जवाब तो कर सकते हैं कि हम मजलिस पढ़ने वहाँ उनका जवाब दे दें, लेकिन वो उन तक पहुँचाने वाला कौन है। अब तो ये है कि जिसके हाथ में मोबाइल है उसका अपना चैनल है, जो उसके दिल में आती है वो अपने बुकरातियाँ झाड़ के और शुरू हो जाता है। ये देखो जी, अच्छा एक साहब का और भी बड़ा मशहूर हो रहा था, मुमकिन आज भी मशहूर हो रहा हो, वो सुना तो हमें भी देखा, मैंने कहा भी सवाल ये कि मैं इसको जवाब कैसे दूँ, ये तो आपने मुझे क्लिप दिखा दिया, मैं इसको जवाब कैसे पहुँचाऊँ। उसमें बड़ा हुआ, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड कर जा रहे हैं कि साहब ये सब कुरान में इंसान को सिर्फ एक नाम दिया गया है मुसलमान का, बाकी फ़िरके कहाँ से आए। बात उसूली तौर पर मैं भी कह रहा हूँ कि फ़िरके वारियत की हिमायत में बात थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन वे कह रहे हैं कि नहीं ये सब बातिल हैं, बातिल, चाहे वो शिया नाम हो चाहे वो सुन्नी नाम हो, जो भी नाम हो ये सब बातिल हैं, क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ एक नाम दिया है, वो क्या है, मुसलमान। इसका मतलब उसने कुरान पढ़ा ही नहीं, उसने कुरान पढ़, उसे मालूम ही नहीं कि जो इस्लाम कबूल कर ले उसका सिर्फ एक नाम नहीं होता मुसलमान। अब मैं कुरान से ही बता देता हूँ आपको, सबसे पहले उसको नाम दिया गया मुसलमान का जब वो इस्लाम लिया है, और जब इस्लाम से आगे की मंजिल में जाएगा तो क्या कहलाएगा, मोमिन। इसी इंसान को, इसी मुसलमान को क्या कहा गया, मोमिन। इसी मोमिन को जब ये और आगे बढ़ा तो इसको कहा गया मुत्तकी, कहा गया कि नहीं कहा गया, मुसलमान भी वही है, मोमिन भी वही है, मुत्तकी, लेकिन दर्जा बंदी हो गई कि नहीं। यानी हर आदमी, हर मोमिन, जिसको कहना चाहिए कि मुसलमान ज़रूर होगा लेकिन हर मुसलमान मोमिन नहीं हो सकता, वरना कुरान मजीद में ये क्यों कहा गया, वकालतिल अरब आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन कुलु अस्लमना, कि अरब के बुद्धू कहते हैं कि हम ईमान लिया है, मोमिन हो गए, कहा कोई मोमिन मोमिन नहीं हुए तुम, अभी यूँ कहोगे अभी तुम मुसलमान हुए हो, तो इसका मतलब क्या है, मुसलमान सब हो सकते हैं, हर मुसलमान मोमिन नहीं, लेकिन हाँ हर मोमिन का मुसलमान होना, हर मोमिन का मुसलमान होना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर मुसलमान मोमिन हो। और फिर ये भी याद रखिए कि हर मुत्तकी का मोमिन होना ज़रूरी, लेकिन हर मोमिन का मुत्तकी होना ज़रूरी नहीं है। क्यों, फिर वही कुरान क्या दिया, ये लदीना आमनु तकुल्लाह, ए ईमान लाने वालों, ए मोमिनों, अब तकवा की तरफ बढ़ो, यानी ईमान के बाद की मंजिल है इंसान, मुसलमान, मोमिन और फिर मुत्तकी। तावील कर सकता है कोई, कहेगा भाई है तो सारे मुसलमान ना, नाम तो मुसलमान का, चलो और तुम्हें बता दें, लफ्ज़ शिया कुरान मजीद में किन के लिए इस्तेमाल किया गया, जाके ढूंढ लो, तलाश कर लो, किसको कहा गया, وَإِنَّهُمْ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, और इन्हीं के नूह के शियों में से इब्राहिम, इब्राहिम को जब मनसब दिया गया, हालांकि इब्राहिम फरमा रहे अनावलुल मुस्लिमीन, मैं पहला मुसलमान हूँ, और कुरान कह रहा है कि नहीं नूह का शिया है, तो हम तो कुरान से ले आएंगे, बाकी लोगों से पूछ लो, हम पर इल्ज़ाम ना लगाओ। हाज़ा मिन शियतिही व हाज़ा मिन अदूवही, जनाब मूसा जब निकले थे बाजार में, और एक बनी इसराइल पर एक क़िब्ती जो था वो जुल्म कर रहा था, तो कौन था, उसने पुकारा था मूसा को, मूसा मेरी मदद करो, ये मुझे मार रहा है पकड़ के, जनाब मूसा ने क़िब्ती को एक मुक्का मारा, वो जान से मर गया। तो कुरान में आयत में है कि नहीं है, हाज़ा मिन शियतिही व हाज़ा मिन अदूवही, वो इनका दोस्त था, इनके शियों में से था, वो उनके मुखालिफिन में से था, तो कुरान मजीद ही नाम दे रहा है। हाँ बाकियों के नाम तलाश करते रहो, अगर हम अपने आप को अली का शिया कहते हैं तो हमसे पहले इब्राहिम नूह के शिया थे। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो ये याद रखें सारे, इसलिए मैं ये मिसालें देता चला जाता हूँ कि ये याद रखा करो कि ये इतने बड़े बड़े जो बुकरात पैदा हो गए इनसे पूछो, वो कह रहे हैं अनावलुल मुस्लिमीन, मैं पहला मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम लाया हूँ, पहला इस्लाम, और जनाब और परवरदिगार ने भी कहा इकरा, यानी इनको सनद दी कि हाँ तुम पहले मुसलमान हो और अल्लाह की बारगाह में तुम इस्लाम लेकर आए हो, ठीक है ऐसा, और लेकिन उसके साथ ही परवरदिगार एक मनसब दे रहा है, मनसब मुसलमान होना अपनी जगह, लेकिन बता रहे कि नहीं ये नूह के इब्राहिम जो थे वो नूह के शियों में से भी है, यानी शिया होना और है, आगे की मंजिल है, जैसे जनाब मूसा का शिया था, तो हाज़ा मिन शियत, ये मूसा का शिया था, समझ में आ गई बात। तो हम दलील रखते हैं, अगर अली का शिया अपने आप को कहते हैं तो हम जानते हैं कि कुरान मजीद में कहाँ कहाँ मोमिन को शिया कहा गया है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। लेकिन खैर जब इंसान नहीं पढ़ता तो मुसीबत यही होती है, जब पढ़ता नहीं है ना उसको मालूम नहीं, जब उसने सरसरी तौर पर देख लिया कुरान को समझ बैठा कि मैं बड़ा कुरान का बहुत बड़ा आलिम बन गए, तो ऐसे हर जगह पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ में बड़े बड़े बदबख्त हैं कि नहीं, हमारे यहाँ का तो नहीं, हमने तो निकाल दिया, फारिग कर दिया उसको, लेकिन दुनिया तो यही कहती है ना, हमारे सर पर डाल दिया। अच्छा एक और मसला हल करते चले जाए यहाँ, वो मलून, वो वसीम रिजवी, जिसको कहा जाता है कि हम पर, जिसने कुरान मजीद में उसकी 26 आयात का कहा कि मुकदमा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, हमारे पड़ोसी मुल्क में जाके, वहाँ पड़ोसी मुल्क में रहता है, खैर वो वहीं का है, तो उसने मुकदमा दायर किया कि इन आयात को निकाला जाए। एक हंगामा, पूरी दुनिया में कयामत बर्पा हो गया। हालांकि वहाँ के उलमा ने, उस मुल्क के उलमा ने उसको खारिज कर दिया, फतवे आ गए कि मुर्तद हो गया, ख़त्म हो गया, उसकी कब्र मनसूख कर दी गई। वहाँ तो कब्रिस्तान है ना, वक्फ किए कब्रिस्तान है, कहाँ किसकी कब्र बननी है, तो उसको मना कर दिया शियों ने कि किसी शिया कब्रिस्तान में इसकी कब्र भी नहीं बनेगी। वो ये सब कर रहे हैं, दुनिया लगी हुई है हमारे पीछे, और शिया ये कर रहे हैं। शिया भाई, हम कह रहे हैं हम में से नहीं है, हम कह रहे हैं हम में से नहीं, नहीं मान रहे। अच्छा अब मैं हवाला दे दूँ, किस किस ने किताबें लिखी हैं मौलाए कायनात के ख़िलाफ़, किस किस ने किताबें लिखी हैं इमाम हुसैन के ख़िलाफ़, किस किस ने माज़ अल्लाह उन्हें खारजी करार दिया, हज़रत अली को, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को किस किस ने माज़ अल्लाह खुरूज करने वाला करार दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। अच्छा मेरे पास तो किताबें भी हैं, मैंने रखा हुआ है उनको, वक्त जब कोई मांगेगा चैलेंज करेगा ये रही किताब, अव्वल तो मांगेगा नहीं, उसे पता है कि लिखी हुई, तो हमने भी वो किताब पेश कर दी अपने एक दोस्त के आलिम के सामने। जब उसने बहुत ज़्यादा वसीम रिजवी बकवास की, तो मैंने कहा ये क्या, तुमने भी तो लिखा है, ये क्या लिख रहे हो इमाम हुसैन के बारे में, तो फौरन कहा ये हम में से नहीं है, हमारा नहीं। मैंने कहा ख़त्म हो गई बात, ख़त्म हो गई ना बात, हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो हम में से नहीं है, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं कि तुम में से नहीं है, तुम हमारी बात नहीं मान रहे कि ये हम में से नहीं है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैंने कहा भाई हमारा सर्फ है, हम कह रहे हैं कि अच्छा भाई तुमने कह दिया तुम में से नहीं, हमने मान लिया तुम में से नहीं, हालांकि और इसको क्या कहे, वो लिख रहा है अपना पूरा लिख रहा है, कौन से किस फिरके से क्या है सब कुछ लिख रहा है अपना। आप कह रहे हो तुम में, आप में से नहीं, हमने मान लिया आप में से नहीं है, तो आप हमारी क्यों नहीं मान रहे भाई, जब हम उस मलून के बारे में कह रहे हैं कि वो हम में से नहीं है, तो फिर आपको भी मानना चाहिए ना हम में से नहीं, खत्म होगी बात। तो ये होता है कि इल्ज़ाम तराशी, इल्ज़ाम तराशी, इल्ज़ाम तराशी, क्योंकि लोगों को मालूम कुछ नहीं, इल्म तो होता नहीं लोगों। मैंने कहा ना कि अभी ऐलान कर दिया जाए कि फला किसी अकलीती आबादी को खुदा ना खास्ता को ऐलान कर देगा, वहाँ तौहीन कुरान हो गई। अब कोई नहीं पूछेगा, जिसने कभी कुरान नहीं पढ़ा, जिसे एक लफ्ज़ कुरान पढ़ना नहीं आता, वो जनाब पेट्रोल लेगा हाथ में, माचिस की तीली दौड़ पड़ेगा उनकी आबादी को जलाने के लिए, हो जाए किसी की मस्जिद की तौहीन हो गया, कुछ ही नहीं, जिसने मस्जिद में कभी कदम नहीं रखा वो भी दौड़ा चला जा रहा है लड़ने के लिए। समझ में आ गए, ये मुश्किल है हमारी। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर अब क्योंकि आठवीं मजलिस में चाह रहा था कि छोटे छोटे से मसाइल हैं जो आपके सामने पेश कर दिए जाए, अब ये उन्हीं में से एक मसला शफात का, सब वहाँ इनको कहा वहाँ उनको कहा मान, अरे भाई मौके की मुनासिबत से अल्लाह का रसूल ये चाहता है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए। अब इस हदीस में जो कंजुल अम्माल की, हमारे बिरादरान अहले सुन्नत ने भी इसको नकल किया और बड़े शद्दोमद, बड़े ज़ोर शोर के साथ नकल किया, इसमें अश्शफ़ाउ खमसतुन, शफात करने वाले कितने हैं क़यामत के दिन शफी के हैं पाँच। सबसे पहला अल-कुरान, हुजूर फरमाते हैं कि पहला शफात करने वाला कुरान, जो कुरान के साथ दोस्ती करेगा। और ये नहजुल बलागा में मौलाए आरिफान का भी फरमान है, एक जगह नहीं कई मकामात पे आपने कुरान के फ़ज़ाइल बयान किए, यह है इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, दो गरबा चीज़ें सुनिए, अगर कुरान अहले बैत का कसीदा पढ़ रहा है ना, तो अहले बैत में से एक भी फ़र्द ऐसा नहीं है जिसने कुरान का कसीदा बयान ना किया। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। हैं अब समझ में आए कि तो मौला के फरमान में भी, और यहाँ हुजूर फरमाने के शफात करने वालों में सबसे पहले कौन है, अल-कुरान, कुरान, यानी जो इससे दोस्ती करेगा, जो इससे पढ़ेगा क़यामत के दिन, ये कुरान आगे बढ़ के उसकी शफात करेगा, माबूद ये मुझे दोस्त रखता था, गलतियाँ हैं ना कोताहियाँ हैं मेरे सदक़े में बख्श दे, तो कुरान के सदक़े में उसको बख्श दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं, जोर देते हैं बच्चों को, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान, सिर्फ बच्चों की शफात नहीं बल्कि बच्चों के सदक़े में माँ बाप की शफात होती, ख़ानदानों की शफात हो जाती। तो पहला कौन है, कुरान, बर्रहम और तुम्हारे रिश्तेदार, वो नेक और मोमिन रिश्तेदार जो ईमान की हालत में, इनका मैं जिक्र कर चुका हूँ कि इत्मीनान और सुकून की हालत में दुनिया से गए, उन्हें हक़ शफात देगा परवरदिगार आलम कि अपने रिश्तेदारों की शफात करो। इसलिए कहते हैं कि सिले रहमी अदा करते रहो, रिश्तेदारों से दोस्तियाँ रखो। हमारे अमाल में कमी रह गई तो कोई चचादाद, कोई चचा मामू फूफी खाला उनका बच्चा, कोई तो हमारी सिफारिश कर देगा, और दुनिया में खराबियाँ रखोगे, लड़ते रहोगे आपस में, कतः रहमी करोगे तो कौन शफात करेगा। अल्लाह का रसूल फरमा रहा है कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी शिफात करेंगे जो मोमिन होंगे, उनको हक शफात मिलेगा, तो अल्लाह के बंदो इसलिए तो सिला रहमी का हुक्म दिया गया। सिला रहमी में दुनिया में भी पुष्ट मजबूत होती है, आखरत में भी नामालूम कौन सा रिश्तेदार उसको तरस आ जाएगा, परवरदिगार मैं इसकी शफात करता हूँ, आने दे इसको मेरे साथ जाने दे। सलवात भेजी मोहम्मद आले वाला। अब मैं ये हदीस के हवाले दे चुका आपको, कहा किए थे, ठीक है। पहला कुरान, दूसरा रहम, तीसरी चीज अल अमानत, तुम्हारी अमानतदारी। जाहिरी अमानत हो या बातिनी अमानत हो, अमानत हो ज़ाहरी अमानत, किसी ने भी तुम्हारे पास कोई अमानत रखवाई है। और याद रखिए कि अमानत की बड़ी लंबी तफसीर है, बड़ी लंबी तशरीह। माँ बाप अमानत है, बहन भाई अमानत, औलाद अहलो अयाल अमानत, यानी इनका हक अदा करना, ये अमानत अदा करना है। इनके जो जो हक हैं वो अदा करने, वो हक अदा करना यानी अमानतदारी। और जो हक अदा नहीं करता वो है खयानतकार, वो खयानत कर रहा है। ज़ाहरी अमानत किसी ने रखवा दी, उसकी भी हिफाजत करना, अमानतों की हिफाजत करना। अमानत में गड़बड़ नहीं। यतीमों की अमानत है, बेवाओं की अमानत है, गरीबों की अमानत है, मुस्तज़फीन की अमानत, इन सब अमानतों का हक अदा करना है। ये अमानतदारी क्या करेगी? क़यामत के दिन शफात करेगी। और बातिनी अमानत क्या है? दीन की हिफाजत, ईमान की हिफाजत, मोहब्बत अहले बैत की हिफाजत। सलावत भेजी मोहम्मद आले। अमानत, खैर तशरी हर एक की अलग अलग तशरी, लेकिन ज़ाहिर है कि महदूद वक्त है, हमें बात को आगे बढ़ाना है। तो तीसरी चीज़ क्या हो गई? पहली चीज़ हो गई कुरान, दूसरी चीज़ हो गई रिश्तेदार, ये रहम, रहमी रिश्तेदार जो कहलाते हैं। रहमी रिश्तेदार से मुराद जानते हैं आप, जो चचा की औलादें, खाला की औलादें, मामू की औलादें, फूफी की औलादें, ये रहमी रिश्तेदार, यानी एक जो रहम जो है, यानी एक शिकम से नाना दादा जो है उनसे एक शिकम से जो औलाद चली आ रही है वो कहलाते हैं रहमी रिश्तेदार कहलाते हैं। तो कहा जनाब वो अमानत चौथे मकाम पे हुजूर फरमाते हैं व नबी यकुम, और तुम्हारा पैगंबर, तुम्हारा रसूल तुम्हारी शिफात करेगा। अब आप ये देखिए कि बख्शिश के मौके कितने दे रहा है परवरदिगार, बख्शिश के मौके। चलो ये नहीं तो ये करेगा, ये नहीं तो ये करेगा, ये नहीं तो ये नहीं करेगा, और अगर उनमें भी कमी रह गई तो फिर हुजूर खड़े हैं, हुजूर कहेंगे हम शिफात करेंगे, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। मैंने किसी मजलिस में बताया था ना कि हुजूर फरमाते मैंने एक दुआ बचा के रखी है। हर नबी को अल्लाह ने ख़ास तोहफा दिया था, दुआ का तोहफा दिया था, हर नबी ने दुआ मांग ली, मैंने नहीं मांगी, मैंने वो दुआ बचा के रखी है क़यामत के लिए। क़यामत के दिन मैं वो दुआ, वो हक इस्तेमाल करूँगा और अपनी उम्मत की शफात करवाऊँगा। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और पाँचवीं चीज़ वह अहलो बैत नबी कौम, पांचवी चीज कौन सी होगी? अहले बैत रसूल मोहम्मद अली और फातिमा हुसैन और हसन, एक से लेकर 12 तक 14 मासूम, ये दरवाजे शफात के खुले हैं हमारे पास। समझ में आ गई बात? ये शफात के दरवाजे खुले हुए, लिहाजा वो शफात करेंगे, हम सब की शफात करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये अहले बैत रसूल, इसलिए अहले बैत के दामन को थाम के रखा जाता है, इसलिए उनके दामन को पकड़ के रखा जाता है। हमारे पास वक्त है एक हदीस और, फिर इंशाल्लाह इसी से कल का आगाज करेंगे। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इज़ा काना यौम अल क़यामत, जब क़यामत का दिन होगा, क़ील लिल आबिद इंतलिक फिल जन्नत, इबादत गुजार से आबिद से कहा जाएगा जा जन्नत में दाखिल हो जा, जन्नत तेरी अमर का सिला ना, इंतलिक जा जन्नत में दाखिल हो जा। قیل للعابد انطلق في الجنه, जा जन्नत में दाखिल हो जा, तेरी बख्शिश होगी, चला जा। وقیل للعالم قف, आलिम से कहा जाएगा ठहर जा, क्यों ठहर जा? تشفع للناس, जा लोगों की शफात कर। आलिम से कहा इसलिए कहते हैं कि उलमा से वाबस्ता रहो, मराजे से वाबस्ता रहो, ना मालूम किस तरह के लोग हैं जिनकी इतनी सादी सी बात समझ में नहीं आती कि कैसे गाड़ी चलेगी उनके बगैर, और दुनिया की गाड़ी भी नहीं चल सकती उनके बगैर। अब आजकल तो खैर, वकील अलील आलिम क़िफ तशफ़ा उन्नास, ठहर जा, आलिम से तू ठहर जा, आबिद गया जन्नत में जाने दे, तू ठहर, तेरा हक है वो इस्तेमाल कर, तशफ़ा उन्नास, जा लोगों की शफात कर। बेहुस्न तादीब का लहू, वो जो तू उनको हुस्न अदब सिखाता था, वो जो तू उनको तालीम देता था, वो जो तू उनकी तालीम और तरबियत करता था, इस वजह से तुझे ये हक हासिल है कि जा अब तू उनकी शफात भी कर। सलावात दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अभी आपने देखा कि आलिम को क्या हक है? अब ये मैं फिर वही जुमला हमेशा हर रोज़ आपसे कह रहा हूँ कि अगर भूल भी जाऊँ तो कल मुझे याद दिला दीजिए। کہ عالم کی شفاعت میں ختم کر رہا ہوں بات کو آج, اور اسی سے ہمیں کل لے کر بات کو آگے چلنا ہے, یہیں سے بات کو لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ, زندگی رہی شب بخیر. تو اب آئیے, یہ حق شفاعت دیا جا رہا ہے, سب کو دیا جا رہا ہے, بس یہی سبب ہے کہ کربلا اور کربلا کے بعد بھی آج تک اہل ایمان جانتے ہیں کہ حق شفاعت کس کس کے پاس ہے. اہل ایمان جانتے ہیں. آپ انصاف سے بتائیے, اس پر تو کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ کربلا جو مقتل ہے, جس جگہ جناب سید الشہداء کو قتل کیا گیا, یعنی سر قلم کیا گیا, وہ جو شہادت گاہ جو آپ دیکھتے ہیں وہاں کربلا میں ہے, یعنی آپ کا مدفن الگ ہے, مدفن کے پاس پھر وہ الگ قتل گاہ ہے نا, مقتل جس کو کہا جاتا ہے, جہاں آپ زین سے زمین پر آئے تھے اور آپ کا سر قلم کیا گیا تھا, اس جگہ وہاں کی خاک کی تاثیر کیا ہے, اس جگہ کی خاص جگہ کی خاک کو کہتے ہیں خاک کے شفا دیتی, صحت دیتی. او اللہ کے بندو, اتنی سی بات تمہیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ حسین جس کا خون جہاں گر جائے تو اللہ قیامت تک کے لیے اس مٹی کو کھا کے شفا بنا رہا ہے, تو پھر خود حسین کا مقام کیا ہوگا؟ حسین افضل ہے یا وہ مٹی افضل ہے؟ حسین افضل ہے یا وہ خاک افضل ہے؟ حسین ہی تو ہے جس نے کربلا کو کربلا مولا بنا دیا, حسین ہی کی وجہ سے تو کربلا کربلا ہے, خون حسین ہی کی وجہ سے تو وہ مٹی کھا کے شفا بنی ہے. اتنی سی باتیں, سب سامنے کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کے خون کے سبب سے وہ مٹی کھا کے شفا بن جائے تو خود اس کا حق کیا ہوگا, اس کا حق کیا ہوگا, اس کا اختیار کیا ہوگا قیامت کے دن؟ بس عزاداران حسین, یہ جتنے بھی کربلا کے شہدا ہیں ان سب کو, ظاہر شہدا کا تو روایت ہے نا کہ شہدا کو حق شفاعت ہوگا, تو ان سے بڑا حق شفاعت کس کے پاس ہوگا, کس کے پاس ہوگا ان کے پاس, ان سے بڑا حق شفاعت. سمجھنے والوں کی بات اسی وقت سمجھ میں آ گئی تھی, مسیحی تھے, عبداللہ ابن وہب کل بھی مسیحی تھے, دلہن کو لے کے جا رہے تھے, اور ماں نے جب دیکھا بیٹا کہ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے, واپس آ رہے تھے, ابھی شب زواب بھی نہیں گزاری ہے, جا رہے تھے واپس, کوفے کے رہنے والے تھے, کہ کیا مسئلہ ہے کربلا کے میدان سے گزرے؟ ماں نے بھیجا بیٹے کو, دیکھ کے تو آ, کیا آیا روتا ہوا, کہتا ہے ماں ایک عجیب منظر ہے, رسول کا نواسا ہے, فرزند رسول ہے حسین, پورا واقعہ بتایا. ماں نے کہا بیٹا, بچے نے کہا اجازت دے مدد کے لیے جاؤں, کہ بیٹا میرا حکم ہے تجھے, اجازت نہیں, میرا حکم ہے کہ جا مدد کے لیے. اس نے اسی عالم میں کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, جان قربان کر دی, تو اتنی معرفت تو اس کو بھی تھی نا کہ حسین کون ہے, معرفت نہ ہوتی تو اپنی جان قربان کیوں کرتا حسین کے اوپر, اتنی معرفت تو تھی اس کو. تو اب اندازہ لگائیے, وہ جو ابھی چند لمحے حسین کو دیکھ کر آ رہا ہے, اس کی معرفت کا یہ عالم ہے, وہ جو زہیر بن قین راستے میں ساتھ ہوا, اس کی معرفت کا یہ عالم ہے, وہ جو ہر رات کو اس لشکر میں تھا, فجر سے پہلے اس لشکر میں آ گیا, اس کی معرفت کا یہ عالم ہے, جو علی کی آغوش میں پلا ہو عباس, اس کی معرفت کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں مصحف تو پڑھ رہا ہوں لیکن آخری جملے پہلے پڑھ دیتا ہوں معرفت بتانے کے لیے صرف آپ کو, کہ جب حسین نے عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا تھا نا, بازو تو نہیں تھے, تو اب جناب عباس نے ایک فرمائش کی تھی, التجا کی تھی, میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ غلام نے اپنے آقا سے التجا کی تھی, مولا ایک خواہش ہے وہ پوری کر دیجیے. کیا مولا, میں میری ماں بتاتی ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کا زیارت, آپ کی زیارت کی تھی, آپ کے آغوش میں آنکھیں کھولی تھی, اسے پہلے آنکھیں نہیں کھولی, اور اب جا رہا ہوں دنیا سے, جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی زیارت ہوں. تو حسین کی آنکھوں میں اشک تھے, فرمایا تھا عباس پھر کیا امر مانے ہے؟ فرماتا ہے مولا عباس, مولا ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے اور دوسری آنکھ میں سر کا لہو جمع ہے. اب سمجھ میں آئی بات کہ عباس کون, کہ جس نے دنیا میں آنے کے بعد آنکھ ہی نہیں کھولی جب تک حسین کی آغوش میں نہیں آ گیا. عباس کون جس کی ماں نے بچپن میں سکھا دیا تھا کہ بیٹا تو کنیز کا بیٹا ہے اور یہ آقا زادے, یہ شہزادے شہزادی ہیں, فاطمہ کی اولاد ہے, یہ سید نساء عالمین کی اولاد ہے, یہ خاتون محشر کی اولاد, کبھی اپنے آپ کو ان کے برابر نہ سمجھنا. اور کہتے ہیں کہ عباس نے کبھی زینب میں کلثوم کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا, ارے عباس نے تو کبھی حسین اور حسن کی طرف بھی نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا. غلام غلام غلام, ہمیشہ اپنے آپ کو غلام سمجھا, اور جانتے ہیں نا کہ ساری دنیا جس سے مرادیں مانگے اس کو کہتے ہیں علی, علی کی مراد کا نام ہے عباس, सब जानते हैं दुनिया में आने का वाकया क्या है जनाब अब्बास का, कितना अहतमाम किया था मौलाए आरिफान ने, कैसे कबीले की खातून से मेरा अहद हो जिससे बेटा हो जो आशूर के दिन मेरी नियाबत कर सके हुसैन की नुसरत कर, ये सब जानते हैं अब्बास। इसीलिए कितने मकामात पे अब्बास को सब्र करना पड़ा, अपने मौला की इताअत में अब्बास ने, अब्बास के पेशानी पे बल नहीं आए कभी, लेकिन हाँ अब्बास को इत्मीनान था कि आशूर के दिन सब हसरतें निकाल लूँगा। पहला मौका जब भाई हसन के जनाजे को दफनाने की बारी आई और सामने लोग आए, तीरंदाजों का लश्कर आया, कमानों के चिल्ले खींचे और ये बात आई कि हम रोज़े रसूल में हसन को दफ नहीं होने देंगे, तो सबसे पहले जिसका हाथ कब्ज़े शमशीर पर गया था उसका नाम है अब्बास, किसी की मजाल है मेरे मौला को उसके नाना के पहलू में दफ नहीं होने देगा। देखा हुसैन ने कि मेरा शेर गुस्से में आ गया, जलाल में आ गया, कब्ज़े शमशीर पे हाथ रख दिया, अब्बास अभी जंग नहीं करनी है, और अब्बास जानते हैं कि मेरे मौला का हुक्म है, सब्र कर लिया अब्बास ने, कोई बात नहीं फिर वक्त आएगा अपने अरमान निकाल लूँ। कितने मकामात ऐसे आए, करबला में एक मरहला ये भी आया कि जब खेमे हटाने के लिए पांच मुहर्रम को वहाँ से कुछ सिपाही आए, दस्ते आए, और आने के बाद उन्होंने कहा कि खेमे यहाँ से हटाओ, अमीर का हुक्म है। अब्बास आगे बढ़े, अपनी तलवार को बेनियाम किया और एक ख़त खींच लिया और जलाल के आलम में फरमाते हैं जिसको अपना सर अपने जिस्म पर अजीज़ नहीं वो ये ख़त उबूर करके इधर आ जाओ। अंसार हुसैनी फ़ख्र से देख रहे हैं कि किसकी मजाल है कि जो अब्बास के सामने आए, आने वाले हालांकि कई दस्ते हैं लेकिन अब्बास का जलाल देख के किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो ख़त उबूर करके इधर आ जाता। हुसैन आगे बढ़े, हुसैन ने देखा मेरे शेर को जलाल आ गया, शाने पे हाथ रखा अब्बास के, अब्बास जंग नहीं करनी, अब्बास खेमे नहर से हटा लो। अब्बास हमारे पढ़ने वाले जोश अकीदत में नामालूम क्या क्या पढ़ जाते हैं और कहते हैं कि इतना जलाल था, इतना गुस्सा था कि हुसैन को पैगाम भेजना पड़ा खेमे में सानिय जहरा के पास कि जैनब अब्बास को जलाल आ गया है, और सानिय जहरा ने पैगाम भिजवाया कि अब्बास खेमे नहर से हटा लो वरना जैनब बाहर आ जाएगी। ये माने सुने हैं तो मैं अर्ज़ करता हूँ, आप भी क्या जानते नहीं हो अब्बास को, अब्बास की मारिफत ज़रा भी नहीं है क्या, अब्बास को नहीं मालूम कि जो हाथ मेरे शाने पर आया है किसका हाथ है, ये कायनात के इमाम का हाथ है, करबला में अब्बास से ज़्यादा कौन मारिफत रखता है हुसैन की। लिहाजा सही रिवायत क्या है कि इधर हुसैन का हाथ शाने पर आया कि अब्बास जंग नहीं करना है, खेमे नहर से हटा लो, उधर अब्बास ने नजरें ज़मीन में गाड़ दी, झुका दिया और एक जुमला का मौला तेरा ये ग़ुलाम तेरे हर हुक्म की इताअत करेगा, जिस शमशीर से तनावें, जिस शमशीर से ख़त खींचा था उसी से खेमों की तनावें काटनी शुरू कर दी अब्बास ने, यह अब्बास, यह अब्बास। जब सुबह आशूर हुई थी तो अब्बास को, अब्बास मुतमईन थे कि चलो इतनी बार मुझे जंग से रोका गया आज मैं अपने अरमान पूरे करूँगा, लेकिन जब जंग का आगाज़ हुआ तो हुसैन ने अब्बास को बुलाया और अलम हाथ में दे दिया, अब्बास तुम लश्कर के अलमदार हो, समझ गए अब्बास के भी जंग की इजाज़त नहीं, कल्ब लश्कर में अलमदार खड़ा है और अपनी फौज को शहीद होते देख रहा है, अपने सिपाहियों को देख रहा है कि एक एक करके जा रहे हैं और मेरा मौला हुसैन उन सब के लाशों को उठा उठा कर ला रहा है। आखिर वो वक्त आया जब कोई यारो यावर ना बचा, जब कोई नासिर ना बचा, अब्बास ने दाएं देखा बाएं देखा, मुकद्दमतुल जैश खल्फे लश्कर कहीं कुछ भी नहीं, बाएं हाथ में अलम है, सर झुकाए झुकाए दरे खेमा पे हाजिर हुए हुसैन के और इजाज़त तलब की, इज़्न बारियाबी तलब किया, मौला ये ग़ुलाम हाजिर होना चाहता, इजाज़त मिली, इज़्न दुखूल मिला अब्बास को, अब्बास खेमे में दाखिल हुए हुसैन के और सर झुका के खड़े हो गए। पूछा हुसैन, अब्बास कुछ कहना चाहते हो, फरमाते हाँ मौला एक दरख्वास्त लेकर आया हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो पेश करूँगा। कहो अब्बास जो तुम्हारे दिल में है कहो। मौला अब तो मुझे भी मैदान में जाने की इजाज़त दे दीजिए। सर झुकाए झुकाए अब्बास गुफ्तगू कर रहे। हुसैन ने बड़ी हसरत से अब्बास को देखा और एक जुमला कहा, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर की जीनत हो, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, अलमदार तो जीनत होता है। अब्बास अब यूँ कह दूँ, तशरीह कर दूँ जुमले की कि अब्बास तुमसे तो ढारस है बीवियों की, तुमसे ढारस है बच्चों की। जब किसी शहीद का लाशा आता था ना तो बीबियाँ और बच्चे आलम के फरेरे को देखते थे, आलम है यानी अब्बास है, और जब तक अब्बास मौजूद है कोई मुसीबत खेमों तक नहीं आ सकती। हुसैन ने ये जुमला कहा, बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो और अलमदार लश्कर की जीनत होता है। सर झुकाए झुकाए अब्बास कहते, मौला मेरा लश्कर कहाँ, मौला मेरे सिपाही कहाँ, सबको तो आप अपने हाथों पर उठा उठा कर लाए हैं, गंजे शहीदा में लाकर लिटाया है। अभी ये गुफ्तगू जारी है, एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई आई, आते ही अब्बास के दामन से लिपट कर कहती है, चचा जान प्यास हलाक किए देती है, क्या आप भी पानी नहीं ला सकते। बच्ची को इतना यकीन है कि अब्बास मेरा चचा मौजूद है, मेरे पास पानी नहीं। अब्बास की जैसे दिली मुराद पर आई, बैठ गए दो सालों और बच्ची के सामने बैठ कर कहते हैं, शहजादी एक बार अपने बाबा से इजाजत दिला दो, ये गुलाम वादा करता है कि पानी लेकर आएगा। इतना यकीन है अब्बास को अपने कुव्वत बाजू पर। बहरहाल सिफारिश ऐसी थी, इजाजत क्यों ना मिलती। बच्ची दौड़ी दौड़ी गई, खेमे से एक सूखा हुआ मशकीजा लाई। अब्बास बच्ची के सामने इतना झुके कि बच्ची ने अपने हाथों से मशकीजे को अब्बास के गले में डाल दिया। बस अजीजो, यही वो मशकीजा है जो आज तक किसी को नहीं मालूम कि अलम के साथ किसने बांधा, लेकिन याद दिलाता है एक बच्ची की जिसने अब्बास के गले में मशकीजा डाला था आशूर के दिन। बस आज़ादाराने हुसैन अब्बास आए मैदान में, कब्जा किया अली के लाल ने, घाट पे कब्जा किया, घोड़े को तराई में उतार दिया, उतरे घोड़े से, मशकीजे में पानी भरा, चुल्लू में पानी लेकर फुरात के मुंह पर मारा, जैसे कह रहे हो कि देख अली का लाल कैसे कब्जा करता है पानी पर, और सुन मेरा कब्जा आज के लिए नहीं, कयामत तक मेरा आलम तेरे साहिल पर लहराएगा। आज़ादारा ने हुसैन, बस हुसैन तो आलम को देख रहे हैं, आलम तेजी से आग घाट पर गया, फुरात तक गया, और फिर वापस आते हुए देखा कि तेजी से वापस आ रहा है। फिर हुसैन ने देखा कि आलम की रफ्तार आहिस्ता हुई। फिर हुसैन देख रहे हैं कि कहीं कभी आलम दाएं जाता है कभी बाएं। हुसैन समझ गया कि मेरा शेर मुश्किल में आ गया। रास्ता बनाने की कोशिशें कर रहे हैं अब्बास, अचानक हुसैन ने देखा कि आलम गिरा मगर फौरन उठ गया। जानते हैं आप क्या हुआ, अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। फिर देखा कि आलम लहराता हुआ थोड़ी देर तक और आगे आया। फिर हुसैन ने देखा कि आलम झुका फिर उठ गया। समझ गए हुसैन के अब्बास का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। बस इसके बाद कुछ देर तक आलम थर थर आया, कभी दाएं गया कभी बाएं गया। तीसरी बार जब आलम गिरा फिर उठ ना सका, आलम फौज हुसैनी ठंडा हो गया। अब सुनिए अब्बास की कैफियत क्या है, जब बाजू कलम हो चुके अब अब्बास क्या करे, मशकीजे को बचाए या आलम को बचाए। आलम फौज हुसैनी ठंडा हो गया, इसलिए ठंडा हुआ कि अब्बास के सामने अब सिर्फ मशकीजे की हिफाजत है। अपने आप को झुकाया, मशकीजे पर छा गए अब्बास, अपने कटे हुए बाजुओं के साथ मशकीजे पर छा गए और एड़ लगाते जाते हैं, अपने रहवार से कहते जाते हैं, जल्दी कर बस एक बार मुझे खेमे तक पहुंचा दे। वादा करके आया हूं बच्चों से पानी लाने का, बस एक बार खेमे तक पहुंचा दे, फिर तुझे कोई जहमत नहीं दूंगा। एड़ लगाते जाते हैं, घोड़े को आगे बढ़ाते जाते हैं, लेकिन अजादारों बस चारों तरफ से तीरों का मेह बरसना शुरू हुआ। पिसरे साद ने हुरमुला को तलब करके कहा, देख जब तक मशकीजे में पानी है कोई ताकत हो सब्बा को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, ऐसा काम कर कि मशकीजे का पानी बह जाए। हुरमुला ने तीर कमान में जोड़ा, करीब आया, तीर मारूं तो कहां मारूं, जहां भी तीर मारता हूं अब्बास के जिस्म में लगता है। कई चक्कर काटे अब्बास की सवारी के, देखा करीब से आकर पहलू में जगह नजर आई, इतने करीब से तीर मारा कि अब्बास की पसलियों को अब मशकीजे को छेदता हुआ तीर अब्बास की पसलियों में पेवस्त हो गए। पस मशकीजे का पानी क्या बहा, अब्बास की आरजुएं बह गईं, अब्बास की उम्मीदें बह गईं। आज़ादाराने हुसैन ये याद रखिएगा, करबला में कोई शहीद ऐसे नहीं गिरा जैसे अब्बास अपनी सवारी से गिरे थे। अरे जब भी कोई शहीद, जब भी कोई जख्मी गिरता था बाजुओं का सहारा लेता था, लेकिन हमारा आपका मौला अब्बास इस तरह सर के बल गिरा था, उसके बाजू ना थे। जब जमीन पर आया सारे तीर उसके जिस्म में पेवस्त हो गए थे। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, उधर बहुत देर हो गई, सकीना इंतजार कर रही है, मेरा चचा क्यों नहीं आता। फिज़ा को तलब किया का अम्मा फिज़ा ज़रा खबर तो लेकर आ, मेरा चचा पानी लेने गया था, बहुत देर हो गई। फिज़ा ने खेमे का पर्दा उठाया, कुछ दूर देर तक मुशाहिदा करती रही, फिर मुड़कर फरमाती है, सकीना मुबारक हो, मुबारक हो, तेरा चचा वापस आ रहा है, तेरा चचा पानी ला रहा है, तेरे चचा का अलम आ रहा है। ऐ अम्मा फिज़ा, आपने बहुत जल्दी कर दी, आपने सिर्फ अलम को आते देखा, ये नहीं देखा कि वो अलम अब्बास के लहू में गर्क है। बस बच्ची ने इतना सुना कि मेरे चचा का अलम आ रहा है, दौड़ना शुरू किया, एक खेमे से दूसरा खेमा, दूसरे खेमे से तीसरा खेमा, आवाज़ें देती जाती है, बच्चों आओ आओ, अपने अपने कूजे भी लेते आओ, देखो मैं ना कहती थी मेरा चचा है अब्बास, वो देखो मेरे चचा का आलम आ रहा है, मेरा चचा पानी लेकर आ रहा है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन वसयालमु लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यन क़लबू मातम हुसैन।